नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर MDR वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। UPI लेनदेन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। Ports, industry, maritime expert together on one platform.
देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी NDA विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनके शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्पकला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे 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 गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमरीका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मनोज।
मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।